आयत देखते हैं, वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और इलाह तुम्हारा सिर्फ इलाह है, एक एक ही इलाह है। ये आयत एक तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे उतरी कि ये सारी बातों की बात एक ये है, यही बात है जो लोगों तक पहुंचानी है, यही बात है तौहीद की कि इलाह सिर्फ एक है, ला इलाह इल्लाहु, कोई इलाह है ही नहीं मगर सिर्फ वो ही है। और वो कैसा इलाह है? जो रहमान है और रहीम है, बहुत ज्यादा मेहरबान है और बार बार रहम करने वाला। और उसकी सबसे बड़ी रहमत क्या है? सबसे बड़ी क्या रहमत है? सूरह रहमान में क्या है? अर रहमान अल्लमल कुरआन, रहमान उसने कुरान सिखाया। उसकी सबसे बड़ी रहमत क्या है? कि ये कुरान उसने हम तक पहुंचा दिया, हमें ये कुरान दिया जिसमें हर चीज खोल खोल के बता दी, ताकि फिर कोई भी गुमराह ना हो। और अगर कोई फिर भी गुमराह होता है तो अपनी मर्जी से होगा, अपनी चॉइस से होगा। अल्लाह की रहमत क्या है? कि लोगों को रास्ता दिखा दिया। अगर हमें रास्ता ही ना दिखाया जाता और कयामत में हमारी पकड़ हो जाती, जहन्नुम हो जाती, तो फिर क्या करते? तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने दुनिया में हमें बता दिया, देखो ये ना करना वरना ये होगा, ये ना करना वरना ये होगा, ये अंजाम है इस अमल का, ये अंजाम है इस अमल का, देखो जहन्नुम ऐसी है, देखो जन्नत ऐसी है, देखो आखरत के ये अहवाल होंगे, ताकि हम गुनाहों से बच सके, नेकियों में दौड़ लगा सके। तो अल्लाह की रहमत है ना ये। कुछ देर के लिए अगर ये सोचे, अल्लाह माफ करे, अगर ये कुरान की नेमत ना होती तो हम क्या थे? क्या हमें पता होता किस रास्ते पे जाना, कैसे जिंदगी गुजारनी है? कौन हमारी रहनुमाई करता? कौन हमें आखरत के अजाब से बचा सकता? तो वो उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक ही है। आज कि कौन इलाह बने हुए? सबसे बदतरीन माबूद जिसकी पूजा की जाती है ना, वो है इंसान का अपना नफ्स। इंसान ने अपने आप को इलाह बना लिया कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं, मेरा मेरे आगे कोई नहीं कोई बात कह सकता, हम हमारे जो दिल चाहेगा हम करेंगे, हमें कौन बाज रख सकता? चाहे दीन है चाहे मजहब है, हम उसको तो कुछ समझते ही नहीं है ना। आज एक आप आम मुसलमान से पूछें जिसको कोई नहीं दीन के फहम है, तो उसको जरा बता के देखें जरा कोई अल्लाह का हुक्म जो उसकी मर्जी के खिलाफ, वो साफ आगे से कह देते हैं कि आप अपना माइंड योर ओन बिजनेस, हमने नहीं ये करना, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो ही करेंगे। अल्लाह ताला बता रहे हैं नहीं, ला इलाह, कोई इलाह नहीं, मैं ये जो मैं है ना, ये मैं कुछ नहीं है, इल्ला हुआ मगर वो ही है सब कुछ। ला इलाह, पैसा कुछ नहीं है, इल्ला हुआ मगर वो अल्लाह सब कुछ है। ला इलाह, ये कैरियर जिसको तुमने इलाह बनाया है ना, ये कैरियर कुछ नहीं है, इल्ला हुआ मगर वो है, वो अल्लाह है सब कुछ। ला इलाह, ये लोग लोग लोगों का खौफ, लोग क्या कहेंगे, लोग ये इलाह नहीं है, इल्ला हुआ मगर वो है इलाह। ला इलाह, देखिए ये ला की तलवार हर एक चीज पे चलाएं जिसको आप समझते हैं कि ये इसके पीछे मैं जाती हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, इसकी मैं सारी मानती हूँ, उसके ऊपर ला की तलवार चला दो। ला इलाहा, ये फैशन कुछ नहीं है कि जो फैशन कहेगा मैं बस वो करूंगी, जो आज के ट्रेंड्स हैं बस मैं वो करूंगी, नहीं, इल्ला हुआ, तुम्हारा इलाह तो वो है, वो तो रहमान और रहीम है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, उसने जो सारे हुक्म दिए वो उसकी रहमत है, उनमें तुम्हारे लिए भलाई है, उनमें तुम्हारे लिए फलाह है, उनमें तुम नुकसान से बच जाओगे, उनमें तुम्हारे फायदे हैं, रहमान है। वो कोई तुम्हें ऐसा हुक्म थोड़ी दे सकता जिसमें तुम्हारे लिए कोई मुसीबत हो, मुशक्कत हो, तुम्हारे लिए कोई अजाब हो, नहीं, वो तो रहमान और रहीम है, ये याद रखो। कैसे उसको अपना अल्लाह माफ करे वो दुश्मन समझ लेते हो कि नहीं ये कर लिया, अल्लाह का हुक्म मान लिया तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे, अल्लाह का हुक्म मान लिया तो हम ये हो जाएंगे। तुम्हारा तो इलाह वही है, तुम्हारा माबूद वही है, वर्दी ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस वही है। इलाह कौन होता है? जिसकी पूजा की जाती है और जिसकी इताअत की जाए। तो आप देखें कि आज किसकी इताअत हो रही है और किसकी पूजा हो रही है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना, हलाक हो गया अब्दुर दिरहम और हलाक हो गया अब्दुर दीनार, अब्दुल दिरहम और अब्दुल दीनार हलाक हो गए, क्योंकि ऐसा भी जमाना आना था ना कि लोगों ने अब्दुल दिरहम बन जाना था, अब्दुल डॉलर बन जाना था, डॉलर के गुलाम है। डॉलर जिधर से मिलेगा उधर जो मर्जी करने को तैयार है, जिधर डॉलर का नुकसान होगा उधर जो मर्जी छोड़ने को तैयार है। तो किसके बंदे हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हलाक होगा। तो अल्लाह के बंदे बनो, डॉलर के बंदे ना बनो। और ये कलमा कोई छोटी बात नहीं है, ला इलाहा इल्ला हुआ, असल में ये ला इलाहा इल्ला ला ही है, हुआ वो ही यानी अल्लाह, यही इस्लाम की बुनियाद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिन में 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा ना, तो उस दिन उसके अमल से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, सिवाय उसके जिसने इससे ज्यादा 100 दफा से भी ज्यादा इसको कहा। लेकिन सोच समझ के कहें कि मैं किसको इलाह बना रही हूं, क्या मैंने वाकई उसको इलाह बनाया है? और अगर किसी को कोई नमाज वगैरह भी नहीं आती, कोई गैर मुस्लिम है, कन्वर्ट हुआ है, नमाज नहीं आती अभी उसको, कुछ और चीज नहीं आती अभी, वो सीख रहा है, तो कम से कम वो इसी कलमे को बार बार कहता जाए, बार बार कहता जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी बहुत बरकतें हैं। अच्छा आगे देखें आयत, ये आयत जो अगली आयत है ना, ये आयत नाजिल क्यों हुई, इसका शाने नजूल क्या है? असल में जब ये इलाहुकुम इलाहु वाहिद उतरा ना, तो मुशरिकीन बड़े हैरान हुए, कहने लगे अच्छा वो वहदहू ला शरीक है, अगर वो अपने कौल में सच्चा है तो उसकी दलील लाई जाए। तो उस पे ये अगली आयत उतरी है। और ये भी कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत उतरी इलाहुकुम इलाहु वाहिद वाली, तो काफिर कहने लगे सारे लोगों के लिए बस एक ही इलाह कैसे हो सकता है, एक ही बस। उस पे ये अगली आयत उतरी, ये देख लो एक ही इलाह है जो ये सारे ही काम करने वाला है। इसी तरह इसके शाने नजूल में ये भी आता है, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए सफा पहाड़ी को सोने का बना दे, ताकि हम उसके जरिए दुश्मनों पे काबू पा सकें और भी फायदे ले सकें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मैं इसको बना तो दूंगा, लेकिन अगर ये फिर भी ना माने तो इनको वो अजाब दूंगा ना कि जो कभी नहीं किसी को दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि नहीं मैं इस पे राजी हूँ कि मैं इनको समझाता रहूँ और मैं इसको इनको बताता रहूँ, लेकिन अल्लाह फिर सफा पहाड़ी को सोने का ना बना। तो इस पे ये आयत उतरी कि तुम सफा पहाड़ी को सोने का बनाने का ये निशानी मांगते हो, तुम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी निशानी है ना? इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहे ना हम तक तो कुरान की आयतें ही नहीं पहुंची, इसलिए हम तो बेगुनाह हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, तो हम कैसे फिर अल्लाह को जानते और मानते? तो ये देखो कि अगर कुरान की आयात नहीं पहुंची तो ये आयात तो तुम सब देख रहे हो, ये अल्लाह की निशानियां हैं जो फैली हुई है इधर उधर, इनसे तुम हिदायत पा सकते थे। तो आयात एक देखें, आयात कुरान की है, इनको भी हम आयत कहते हैं ना, आयत का मतलब क्या होता है? निशानी। तो एक तो ये अल्लाह की निशानियां हैं, यानी इनको पढ़ते हैं हमें अल्लाह याद आता है, ठीक है ना, हमें अल्लाह की पहचान होती है। और एक आयत कौन सी है? ये जो आफाक में है, आफाकी आयात जिनको कहते हैं, जो कायनात में बिखरी पड़ी हैं, आसमान है, जमीन है, पहाड़ है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सब आयात ही हैं, ये आयात हैं। और एक आयात अनफुसी हैं, हमारे अपने नफ्सों में हैं वो आयतें, यानी ये निशानियां हैं, हमारे जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारे जो हमारा सांस लेना है, हमारा देखना है, हमारा सुनना है, हमारा सोचना है, हमारा चीज़ों को हजम करना है, ये सारा निज़ाम ही है ना, ये सारी आयात है। आयत देखिए उसी चीज को कहते हैं ना जिसको देख के कोई याद आ जाए, मसलन आपने मुझे एक अंगूठी दी है, जब मैं अंगूठी की तरफ देखूं तो मुझे आप याद आ जाए, तो ये क्या है? आयत है, निशानी है आपकी। जैसे कोई तस्वीर आप देखें तो उससे आपको उसका मुसव्विर याद आ जाता है। तो ये कायनात एक तस्वीर है, समझ लें, इसको देख कर इसका बनाने वाला याद आ जाता है कि किसने इसको पैदा किया। लेकिन प्रॉब्लम कि हम इन इन آیات کو جو یہ جو آفاقی ہے نا، آفاق میں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو ہم دیکھ دیکھ کے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی انہیں کو دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، چرند پرند، یہ تو سپرنگ ہے، سمر ہے، ونٹر ہے، آتا ہے جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب، بارش برستی دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی اتنی بگ ڈیل ہے ہی نہیں. اب ہم سمجھ لیں اگنورینس میں چلا جاتا ہے نا انسان، اگنور کر دیتا ہے ان چیزوں کو کیونکہ روز ان کو دیکھتا ہے. ہاں کسی نے برج بنا لیا، او کتنا بڑا برج بنایا اس نے، کسی نے بلڈنگ بنا لی، کیا واقعی بڑی شاندار بلڈنگ بنائی، اور جو سورج چمک رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت ہے. چاند کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، بغیر چھت کے کھڑا ہوا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، تو تم ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے نہیں ہو، کسی نے بلڈنگ بنا لی اس کو دیکھ کے، کیونکہ ان سے ہم روزانہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا. تو جب ایک دن وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم دیکھ کے ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو اتنی معمولی سی چیز ہے، اس سے کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تھیں، ان کو دیکھ کے کبھی ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایوری ڈے کا ان کو دیکھنے سے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو قرآن کی آیتیں یہ کیا کرتی ہیں، سبحان اللہ، یہ ہمیں توجہ کراتی ہیں یہ آفاقی آیات پہ، یہ ہمیں توجہ کراتی ہیں، یہ ہمارے اندر وہ جو ریئلائزیشن ہے کہ یہ نعمتیں ہیں اور ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں، یہ ہمیں کرواتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی بھی ہم آیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا، لیکن جنہوں نے پہلے قرآن پڑھا ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اس وقت میں، اور جب انہوں نے قرآن پڑھا اس کے بعد، جب وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، فرق پڑا نا. پہلے کبھی یہ آپ نے مطلب اتنا توجہ ہی نہیں دی تھی، اب جب قرآن پڑھ لیا تو آپ ہر ایک چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ نے کیسے کیا، پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن کی آیات، یہ ایکچولی انسان کو جگاتی ہیں، اس کی توجہ دلاتی ہیں، یہ ان چیزوں پہ غور کرو جن کو آج تک انسان نے اگنور کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سو سبحان اللہ، ہم نے کیا سوچنا ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے، ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم ان چیزوں پہ ہی غور کر لیں. یہ کتنے سارے لوگ ہیں کافر ہیں اور باقی جن لوگوں کو نہیں سمجھ ہے، نہ سمجھی میں ابھی تک زندگی گزارے، انہیں سڑکوں پہ پھرتے ہیں، انہیں جگہوں میں جاتے ہیں، لیکن کائنات کو دیکھتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے، کوئی رب ہے، کوئی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، کوئی ہے جس نے ایسے خوبصورت موسم عدل بدل رہے ہیں، کوئی تو ہے، کوئی ہے جس نے اتنی ہارمنی رکھی. دیکھیں یہاں پہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اتنے بھی انسان غور کرتے کہ آسمانوں کو دیکھو، اس کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اختلاف میں، رات اور دن کے اختلاف کیا ہے، میں نے دو باتیں آپ کو بتائی نا، ایک ہے پیچھے آنا کہ رات آتی ہے اس کے پیچھے دن آتا ہے، اس کے پیچھے رات آتی ہے اس کے پیچھے دن آتا ہے، اس کے پیچھے رات آتی ہے اس کے پیچھے، ایسی ہے نا، تو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. کبھی رات دن سے پہلے نہیں آ جاتی کہ رات ہے تو رات ہی رہے، دن کو نہ آنے دے، کبھی دن ایسے نہیں کرتا کہ میں ہی قبضہ جما لوں، اب میں نے رات کو نہیں آنے دینا، جس کی کرسی ہے وہ چھوڑتا تھوڑی ہے، اب میں آیا ہوں تو اب میں تھوڑی جاؤں گا، نہیں ایسے نہیں کرتے، وہ چلا جاتا ہے پھر وہ آ جاتی ہے. یہ آپ کو کچھ ریمائنڈ کراتا ہے، کچھ یاد کرواتا ہے، یہ آیات ہے نا، یہ تو کچھ یاد کرانی چاہیے کوئی چیز آپ کو. پھر دیکھیں اختلاف کا دوسرا معنی کیا ہے، اختلاف کا دوسرا معنی ہے کانفلکٹ، دوسرے کی مخالف چیز ہونا. تو دیکھیں دن ہے تو وہ روشن ہے، رات ہے تو وہ اندھیری ہے، دن ہے اس کے اندر کام ہوتا ہے، رات ہے اس میں آرام ہوتا ہے، تو یہ دوسرے کی اپوزٹ چیزیں، اختلاف ہے دونوں کے اندر. اختلاف کہتے ہیں نا کانٹرڈکشن کو، ایک دوسرے کے کانفلکٹ کو، کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہونا. تو سبحان اللہ، ان میں اگر تم غور کرتے تمہیں اللہ مل جاتا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں، یہ ساری اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کائنات جو ہے نا اتنی عظیم و شان ہے، اس کو دیکھ کے انسان ریئلائز اگر واقعی عقل استعمال کرے تو ضرور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بنانے والا ہے کوئی، یہ ایسے نہیں خود ہی ہو گیا. دوسرا نمبر ٹو کیا چیز وہ ریئلائز کرے گا کہ اس میں دیکھیں اختلاف ہے نا، لیل میں اور نہار میں، آسمان میں اور زمین میں اختلاف ہے نا، اپوزٹ چیزیں، اس کے باوجود کتنی ہارمنی سے چل رہے ہیں، کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی یہاں پہ، کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی دوسرے کو دھکم پیل کرے، کوئی یہ سوچے کہ میں ہی ہوں تو بس میں ہی رہوں، नहीं, दिन अपने आप को मिटाता है तो रात आती है, रात अपने आप को मिटा देती है तो दिन आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की खातिर वो अपने आप को मिटाते हैं तो दूसरा उसकी जगह ले सकता है। तो कोई है ना जो ये इसका खालिक है, जिसने इसको प्लान किया कि कैसे आएगा, जिसने प्लान किया कि आसमान ऐसा होगा, आसमान नीला होगा, या इसके कोई सतून नहीं होंगे, या इतना ऊंचा होगा, या ये इसकी जो विड्थ और लेंथ और इसकी वो ये कितनी होगी डायमेंशंस, और जमीन कैसी होगी, जमीन का फैलाव कैसा होगा, जमीन पे जिंदगी कायम कैसे होगी, कोई तो प्लानर है। फिर नंबर थ्री चीज क्या इंसान रियलाइज करता है, गौर करे कि इसमें हर चीज इस कायनात में ना देखो फायदा पहुंचा रही है। इसका मतलब इसकी किसी ने प्लानिंग की है ना, बड़ी कॉन्शियसली प्लानिंग हुई है इसकी, हैप हैजर्ड ऐसे ही इत्तेफाकी तौर पे या इस तरह से नहीं हो गई, कोई है, क्योंकि हर चीज वरना कैसे फायदा पहुंचा रही है। सूरज फायदा पहुंचा रहा है, चांद फायदा पहुंचाता है, रात और दिन का आना जाना किसी फायदे के लिए, और उनका एग्जैक्ट उस तरह से होना इतने घंटे की रात हो, इतने घंटे का दिन हो, ये भी हमें फायदा पहुंचा रहा है। अगर रात होती 3 दिन की और उसके बाद दिन आता 5 दिन का, हम कैसे रहते। जिसने हमारी जरूरत के मुताबिक, हमारी नीड्स के मुताबिक, आप देखें शाम तक इंसान का जिस्म वैसे ही थक जाता है, इसका मतलब अब उसको जरूरत है ही है आराम की, तो रात आ जाती है। फिर आप रात जब सो लेते हैं, अच्छी नींद आप सो ले तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं, इसका मतलब अब जरूरत थी दिन की, आपका आराम कंप्लीट हो गया। तो कोई है जिसने, जिसको पता है इस इंसान की इतनी जरूरत है, इसके मुताबिक रात और दिन आने चाहिए। सुभान अल्लाह। और फिर देखो इतने छोटे से कमरे को रोशन करना कितना मुश्किल होता है, और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया उसे एक रब ने, दिन चढ़ाया, सूरज को किसी ने तो चमकाया है ना, किसी ने तो जमीन को घुमाया, इसकी रोटेशन जो हुई है किसी ने तो की है ना, कैसे हो रही है। वल फुल किल्लती तजरी, और कश्तियों में जो चलती हैं कहां, फिल बाहर समंदरों में, बिमा यनफाउन नास, इसमें भी फायदे हैं लोगों के लिए। तुम ये नहीं सोचते कितना तुम्हारा सामान लोड लेकर जा रही है, चल रही है इन ये कश्तियों का, किसी फायदा किसको हो रहा है, शेरों को फायदा हो रहा है, चीतों को फायदा हो रहा है, जीबरे को फायदा हो रहा है, और चूंटियों को फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है कश्तियों के चलने से, इंसानों को। आप देखें आज आपकी चीजें, अगर आप छोटा सा पैकेज भी बायर भेजे ना तो इतने पैसे लगते हैं, और बाय शिप भेजें तो कितना सस्ता होता है। तो ये शिप्स के अंदर आपकी गाड़ियां भी आती हैं, आपकी प्लास्टिक की चीजें, आपके कपड़े, आपकी और कितना बरतने का सामान, कितनी कितनी हैवी मशीनरियां, वो सब शिप्स में आती हैं। आप देखते हैं जब आप ये देखती हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन फलां, तो सोचती नहीं ये कैसे हम तक पहुंची, क्योंकि अल्लाह ने कश्तियों को ये दी, उनको ये इजाजत कि वो इसके ऊपर, इस पानी पे चल सके, तो तब हम तक ये चीज पहुंची। वरना जिस मटेरियल से कश्ती बनती है उसका छोटा सा टुकड़ा है सुई, वो तो डूब जाती है, इतना बड़ा पीस वो तैरता रहता है। आज साइंस कहती है ये इस लॉ के तहत है, ये उस लॉ है, फलां लॉ ऑफ नेचर, फलां लॉ ऑफ नेचर। ओहो, तुम लॉज का तो तुमने पता चला लिया, मगर उस लॉ को कोई बनाने वाला भी तो होगा, उस तक नहीं तुम पहुंचे। भाई कोई लॉ, जब कोई लॉ कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो किस चीज का पता देता है कि इस लॉ को बनाने वाला कोई है। आपके भी जेहन में आ रहा होगा, नहीं वो तो लॉ ये है, पानी का लॉ ये है, फिर शिप के अंदर ये लॉ है, तो फलां के अंदर ये है। आखिर इंसान की अकल कहां चली गई कि अगर कानून तक पहुंच गया, कानून वाले बनाने वाले तक क्यों नहीं पहुंचा, क्या रुकावट है। इसलिए कि कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। साइंस भी पढ़ी तो इसलिए पढ़ी कि नंबर आ जाए, और ये फिर ये मैं इस जगह पे इतनी पोजीशन ले लूं और ऐसे हो जाए, और फिर फलां मुझे इतनी डिग्री मिल जाए और ये सर्टिफिकेट मिल जाए। कभी इस चीज को सामने रख के साइंस भी नहीं पढ़ी कि अपने रब को पहचान जाओ। ये सब चीजें देख देख के तो हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। आसमान में कितना सुकून है, कितनी हारमनी है, सूरज में कितना डिसिप्लिन है, ना लेट होता है ना जल्दी आता है, इन टाइम होता है। इससे अपने खालिक को पहचानो कि जब उसकी तखलीक में ये सब चीजें देख रहे हो ना, बैलेंस, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, इन टाइम होना, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी ऐसा ही है, वो खुद भी इन चीजों को पसंद करता है, क्योंकि उसकी तखलीक में ये सब कुछ है ना। फिर जितनी ब्यूटी है उसकी चीजों में, तो फिर ये सोचें कि वो ब्यूटी को पसंद करता है, तभी तो ये सारी चीजें उसकी तखलीक में है ना। सुभान अल्लाह। तो एक-एक चीज को देखो कि ये जो चल रही हैं समुद्रों के अंदर कश्तियां, ये भी इसलिए है कि लोगों को नफा पहुंचे। तो आप सोचते हैं कभी कि मेरे रब ने मुझ पे कितना करम किया है, ये जो कश्तियां चल रही हैं इनसे जहां पे औरों को फायदा पहुंच रहा है, मुझे भी तो फायदा पहुंच रहा है। मेरे घर में कितनी सारी चीजें हैं जो इन समुद्रों पे चलने वाली कश्तियों के जरिए मुझ तक पहुंची है। और फिर वमा अनजल अल्लाह मिन समाई में माइन, और जो उतारा अल्लाह ने आसमान से पानी में से, क्या होता है वो बारिश, पानी ऊपर से नीचे कैसे आता है, ऊपर कैसे जाता है पहले तो बताएं, ऊपर जाएगा तो वहां से नीचे आएगा ना। अब हमने वाटर साइकिल तो सीख ली है, सब ने पढ़े, जिन्होंने भी साइंस पढ़ी सब ने पढ़े वाटर साइकिल क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर गया फिर वहां से गया। हाँ तो क्या आपके जहाज पानी को ऊपर लेके जा रहे थे? अगर हमारे जहाजों को ले जाना पड़ता तो सारी दुनिया का फ्यूल ही खत्म हो जाता। तो कौन है फिर जो टनों पानी ऊपर चढ़ा रहा है? अब बर्फ आजकल पड़ रही है तो देखें, बर्फ भी कभी 10 इंचेस, कहीं 12 इंचेस, कहीं कुछ 1.5 फुट, कहीं 2 फुट, इस तरह से पड़ने लगे। अल्लाह अकबर, कभी आपने सोचा इस बर्फ को उठाना, एक थोड़ी सी जगह से ही साफ करना कितना मुश्किल है, इंसान थक जाता है। इस बर्फ को ऊपर किसने पहुंचाया है? ऊपर कैसे पहुंची? वहां से उतरी तो कैसे उतरी? कौन इस पानी को, जो समुद्रों से ये पता चल गया देखे कि समंदर का पानी कितना नमकीन होता है, लेकिन जब बारिश बरसती है तो उसमें तो नहीं ऐसा होता। किसने नमक को नीचे ही रहने दिया और पानी ऊपर चला गया? किसने उसको भाप बनाया? किसने बादल बनाए? किसने उनको चलाया? आप देखते हैं बादलों को, आगे बादलों की भी चले बात आ रही है, तो अभी इसको देखते हैं कि बारिश की सूरत में जो पानी बरस रहा है उसका वाटर साइकिल सब ने सीख लिया, तो क्या पानी का ये अपना फैसला है? क्या कतरों का ये अपना फैसला है कि हमने कहाँ उतरना है? हाँ? समुद्रों का अपना फैसला है कि हमने पानी ऊपर भेजना है? फिर किसका फैसला है? कभी कभी आपका दिल चाहता है बारिश बरसे, बारिश बरसे, हाय बादल आ गए, बादल देख के भी आप खुश होते हैं, फिर क्या होता है वो बादल आगे चले जाते हैं, बारिश ही नहीं बरसती। किसने इनको हुक्म दिया कि यहां पे नहीं रुकना, आगे जाना है? तो वाटर साइकिल को भी पा लिया, लेकिन वाटर साइकिल बनाने वाले को नहीं पाया। अल्लाह ने ही इन समुद्रों को अपना ये कानून वही किया जिससे ये समुद्र पानी को ऊपर उड़ने देते हैं भाप बन के। हाँ? और कितनी हार्मनी है देखें, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से पूरी कोऑर्डिनेशन, पूरी उसके साथ यानी काम कर रहा है अच्छे तरीके के साथ, तो फिर ही ये निजाम चल रहा है। देखिए ना, वरना सूरज कहे कि मैंने तो नहीं चमकना, मैं ये इतना चमकू यहाँ पे कि ये पानी भाप बन जाए, समंदर कहे हमने नहीं पानी को जाने देना, हमारे से पानी की कमी हो जाएगी, बादल कहें कि हम क्यों जाएं कहीं और, इतना इतना चल के इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है, हम तो यहीं पे खड़े रहेंगे, हवाएं कहें हम क्यों चलें। तो देखें, लेकिन जो ये सारे निजाम चल रहे हैं ना, इससे पता चलता है जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना डिफरेंट, एक जगह पे गवर्नमेंट में कि कोई ये डिपार्टमेंट, कोई ये डिपार्टमेंट, अल्लाह के यहाँ पे भी देखे सारे डिपार्टमेंट, समुंदर का डिपार्टमेंट, मौसम का डिपार्टमेंट, बादलों का डिपार्टमेंट, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि हम दुनिया में आराम से जिंदगी गुजार सके, ताकि हमारा सर्वाइवल हो सके यहाँ पे, ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। और हमें इतनी भी फुर्सत नहीं कि कभी हम गौर ही कर लें कौन कौन है जो हमारे काम में लगा हुआ है। फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, फिर उसने जिंदा किया इसके साथ, इस पानी के साथ। भी ही का मतलब क्या, ही की जमीर किस तरफ जा रही है? माँ इन की तरफ, पानी की तरफ। इस पानी के जरिए से उसने जमीन को जिंदा किया, जमीन को जिंदा कैसे जमीन होती है, इसमें मुर्दा जमीन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, उसमें फल फूल पौधे ये सब उगते हैं। इतनी सारी किस्म की पौधे उगते हैं, पानी एक है और चीजें कितनी मुख्तलिफ है। सारी बॉटनी का जो सब्जेक्ट है ना वो इस पे है, इसी पे फाहिया भी अर्द बाद मौती है। उसने जिंदा किया जमीन को, इसमें से निकली है ये सारी करोड़ों तरह के पौधे हैं, और जिनकी खसूसियात अलग हैं, रंग अलग हैं, खूबसूरतियां अलग हैं, टेस्ट अलग हैं। आप एक को टेस्ट करें, एक जगह आम निकल रहा है, दूसरी जगह सेब निकल रहा है, तीसरी जगह फालसा निकल रहा है, मट्टी एक पानी एक। लेकिन देखो उसने कैसे मट्टी को जिंदा कर दिया, रंग रंग के फूल इसमें से निकलते। ये तो मुर्दा पड़ी हुई थी, और वह बस फीहा मिन कुल्ली दाबतिन, और हर तरह के जानवर रेंगने वाले इसमें फैला दिए। एक जमीन है, एक मट्टी है, कितनी तरह के जानवर, शेर भी इसी जमीन से पैदा होता है, बकरी भी इसी जमीन में चलती फिरती, फिर और कितने मुख्तलिफ शक्लों वाले, रंगों वाले, मिजाजों वाले, नस्लों वाले जानवर, तो उनको कोई बनाने वाला है कि नहीं, बसाने वाला है कि नहीं, उनकी जरूरियात पूरी करने वाला है या नहीं। तो हमें क्या पता चलता है, बेहिसाब कुदरत वाले रब का पता चलता है, इतनी कुदरत वाला जिसका अंदाजा इंसान कर ही नहीं सकता। इस एक आयत में ना आप देखें इतनी सारी निशानियों का जिक्र है, इसलिए इसको आयतुल आयात कह सकते हैं आप, कि एक आयत में आयात ही आयात है। इसमें सात बड़ी निशानियां हैं एक आयत में, कुरान की किसी और आयत में इस तरह से नहीं है। तो देखो सुभान अल्लाह, तो इन चीजों को देखकर तुम अल्लाह की कुदरत की तरफ मुतवज्जे हो। ये देखो ये सारी चीजें एक दूसरे से तावुन कर रही हैं, एक चीज अपने आप को मिटा देती है तो दूसरी चीज का वजूद होता है। मिट्टी में पौधा कैसे निकलता है, उसका सीना फटता है तो पौधा अंदर से निकलता है, उसने अपने आप को फाड़ दिया, बीज अपने आप को फाड़ता है तो पौधा निकलता है। इंसान इन चीजों से क्या सीखता है, अपनी जात को मिटा देना पड़ता है तो फिर इंसान कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता है, अपनी जात को मिटा देने से। और अगर आप सोचें कि हम भी ऐसे ही रहें नाजुक से, और हमसे हम कुछ ना करें और ना कोई हाथ हिलाएं, ना को हमारा कुछ जाए, तो हम बस काम भी सारे हो जाएं हमारे, प्रोडक्टिव भी हो जाएं हम इस दुनिया के लिए, तो ये नहीं हो सकता। इस दुनिया का देखें कानून ही ऐसा है, एक चीज खुद को मिटा देती है तो तब दूसरी का वजूद होता है। और तशरीफ रियाह, और तेज गर्दिश में हवाओं की, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी हवा भी है। देखिए कई हवाएं सर्द हैं, कोई गर्म है, कोई ऐसी हैं जो फसलों को झाड़ देती हैं, हरिकेन टाइप आ जाते हैं, कोई हवा ऐसी है कि जो बहुत नरमी के साथ चलती है। तो रियाह जो है, अरबी में रीह और रियाह दो लफ्ज आते हैं हवा के लिए। रीह का लफ्ज ज्यादातर जो है ना हलाकत और तबाही वाली हवाओं के लिए आता है, और रियाह का लफ्ज ज्यादातर किसके लिए आता है, खुशगवार रहमत वाली हवाओं के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दाऊद में है कि रीह जो है अल्लाह की रहमत से है जो रहमत लाती है और अजाब को लाती है। जब तुम रीह को देखो तो उसको बुरा ना कहो, यानी आंधी को देखो, तूफान को देखो, उसको बुरा ना कहो, और अल्लाह ताला से उसकी खैर का सवाल करो, और उससे उसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करो। तो तशरीफ रियाह तेज गर्दिश में हवाओं की, जो एक नरमी से चलने वाली हवाएं हैं, ये भी तो आपको बताती हैं, आप एक अनसीन चीज है हवा, देखें देख नहीं सकते उसको, पकड़ नहीं सकते उसको, ना नजर आने वाली एक चीज, मगर उसका जोर कितना है कि बड़े बड़े जहाजों को उल्टा दे, दरख्तों को गिरा दे, छतों को उड़ा दे। क्या ये उस कुदरत वाली जात का पता नहीं देती कि किसी के तो कंट्रोल में है ये हवाएं, रुख बदल लेती हैं, कभी इधर से आ रही हैं, कभी उधर से जा रही हैं। कितनी तरह की हवाएं होती हैं ना, कोई बर्फानी है और कोई गर्म लू जैसी है। तो ये चेंजिंग ऑफ विंड्स जो है, ये चलना एक का और कोई कभी दूसरी का, ये भी किसी का पता देता है ना। और हवा इंसान को क्या बता रही है, देखो अनसीन है, नजर नहीं आ रही, लेकिन इसने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। सुभान अल्लाह, तो एक अनसीन रब भी है, जिसने तुम्हें घेरा हुआ है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, समझ आई ना? और सहाब मुसखर बैन समाई वल अर्द, और बादल हैं जो मुसखर किए गए हैं आसमान और जमीन के दरमियान, ऐसे बादल हैं। अगर तुमने अपने रब को पहचानना है तो पानियों को देख लो, रात और दिन के इख्तलाफ को देख लो, बादलों में अपने रब को देख लो। बादल किसके हुक्म पे चलते हैं, आसमान और जमीन के दरमियान फ्लोट कर रहे होते हैं, कौन बादल बनाता है, कौन इनको चलाता है, कैसे उस खालिक ने तुम्हारी जरूरियात का इंतजाम किया। तो आप थोड़ा अपने अंदर ये आदत डालने गौर व फिक्र की, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें आयात लिकौमी याकिलून, उस कौम के लिए निशानियां हैं जो अकल रखती है, अकल वालों के लिए इसमें निशानी है कि इनका बनाने वाला चलाने वाला कोई। बेवकूफ लोग तो बहुत सारे फिर रहे हैं जिनको कोई अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो इसी कायनात में फिर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो अकल वाला है ना, अगर हम कहते हैं कि हम अकल वाले, तो हमें जरूर इसमें निशानी नजर आएगी, हमें जरूर ये कोई पता दे रही है एक रब है, एक रब है, उसने ये जानवर मेरे लिए पैदा किए, इनको जमीन में मेरे लिए फैलाया। कितने ही जानवर हैं जिनका मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेरे ही काम कुछ कर रहे हैं। अब ये तो छोटा सा वो अर्थ वर्म होता है, उसका भी उन्होंने पता ये बताया कि देखो नीचे जमीन को जरखेज करता है, रिंग वर्म नहीं होता, रिंग वर्म कहते हैं, अर्थ वर्म कहते हैं जो बारिश के बाद निकल आते हैं, वो जमीन को नीचे से जरखेज करता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी जमीन को ये देखो ये अच्छा कर रहा है पौधों के लिए, इनडायरेक्टली आपको ही सर्व कर रहा है। तो आज आप ने जो खाना खाना है उसके ऊपर ये सोचिएगा कितने इंतजाम हुए, कितनी अल्लाह की मशीनरी चली तो ये खाना आज मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये कहां से चला, कहां पहुंचा, किस स्टोर में गया, कैसे मेरे घर पहुंचा। उससे भी पीछे चले जाएं तो पैदा कैसे हुआ, किस जगह पैदा हुआ, कहां से इसको पानी मिला, कहां से पला बढ़ा, इसमें जो नमक डाला वो कहां था, इसमें जो मिर्चें डाली वो कहां थी, इसमें जो तेल डाला वो किधर था। कितनी सारी चीजें इस एक खाने में पड़ी हुई है मेरे सामने, कितनी अल्लाह की नेमतें, और मुझे कभी नहीं ये ख्याल आया कि मैं इन पे गौर करूं, कभी नहीं ये सोचा। जितना ज्यादा आप सोचेंगे और गौर करेंगे ना, इतना ही आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक और बनता जाएगा। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करना भी सिखाए और उसके जरिए अपनी जात तक पहुंचा दे। पूरी कायनात अल्लाह का तारुफ है, उसकी निशानी है, उसकी पहचान है। हम गौर तो करें और वो फिक्र वाली नजर तो लेकर आए। मैंने आपको तो थोड़ी सी सिर्फ बातें बताई हैं। अब देखें एक बात किसी तफसीर में ये भी लिखी हुई थी बड़ी प्यारी, कि इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, हवा, पानी, खुराक। खुराक के बगैर वो थोड़े दिन जिंदा रह सकता है, इसलिए खुराक हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मुशक्कत करने के लिए इसको, मुशक्कत से थोड़ा सा मिलता है उसको, थोड़ी सी कुछ काम करना पड़ता है क्योंकि इंसान उसके बगैर रह सकता है थोड़े दिन। पानी उसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, इसलिए उसको पाना उसके लिए बहुत ही आसान कर दिया, जमीन को तो पानी निकल आएगा, इतनी ज्यादा कोई नहीं मुशक्कत उसके लिए, कोई रोजी कमानी नहीं पड़ेगी। हवा के बगैर वो एक मिनट भी नहीं रह सकता, तो उसको बिल्कुल ही फ्री कर दिया, बिल्कुल आम कर दिया, हर जगह हर वक्त बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी उस पेमेंट के, बिल के आपको हवा मिल जाती। तो मतलब ये सारी चीजें आपके गौर व फिक्र के लिए ना, जितना भी आप इसमें गौर करते रहेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको लुत्फ भी आएगा, आपको अल्लाह ताला के एहसानात भी आपके जहन में और आएंगे, अल्लाह से मोहब्बत भी पैदा होगी, क्योंकि जिसका एहसान होता है उसी से मोहब्बत होती है। इमाम हसन फरमाते हैं कि एक घड़ी का गौर व फिक्र, एक घड़ी का, रात भर के कयाम से बेहतर है। क्योंकि कयाम इंसान बगैर सोचे समझे भी करता रहता है, लेकिन रात भर आप कयाम करें ना, उससे भी बेहतर है आप एक घड़ी बैठ के गौर व फिक्र करें। तो कभी अकेले बैठें, सोचें इन चीज़ों को। इसी तरह बिशर हानी फरमाते हैं कि अगर लोग अल्लाह की अजमत पर गौर व फिक्र करें तो कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करें। वाकई अगर हम गौर व फिक्र की आदत डाल लें ना, और हमें फिर ये एहसास हो जाएगा कि मेरे रब ने मेरे ऊपर क्या क्या नेमतें की। कभी आपने इस चीज का शुक्र अदा किया कि आसमान है, सूरज है, चांद है मेरे लिए, हवा है मेरे लिए। हम अगर आपको कहें अच्छा बताएं आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी हैं, तो आप फौरन कहेंगे हाँ भाई घर है, चलो इस्लाम की नेमत है। हाँ कोई ज्यादा अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो इस्लाम भी आपको एक नेमत लगेगा, अदरवाइज तो शायद बाज़ लोग इसको तो भी काउंट ही नहीं करते कुछ। ईमान कोई नेमत है, सेहत की नेमत का कह देंगे, दो चार ये चीजें हैं। मगर क्या बारिश की नेमत का कभी शुक्र अदा किया, क्या बादलों की नेमत का शुक्र अदा किया, क्या कश्तियों की नेमत का शुक्र अदा किया? इसलिए कि ये चीजें हमें मिलती रहती हैं ना, कभी बंद नहीं होती, तो इसलिए हम शुक्र भी नहीं अदा करते। अगर बंद हो जाए तो भी कश्तियां चल ही ना सके, फिर हमें शुक्र गुजारी आएगी कि अल्लाह हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी चीजें हमें इससे मिलती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो कैसे गौर व फिक्र किया करते थे। हज़रत अबू शुराह जो थे रहमतुल्लाह अलैह, वो जा रहे थे कि अचानक बैठ के कंबल ओढ़ा और रोने लगे, तो किसी ने पूछा आप क्यों रोते हैं? फरमाया मैंने जिंदगी के गुजर जाने पे और कम अमल करने पे और मौत के करीब होने पे गौर किया तो मैं रोने लगा। वो ऐसे गौर किया करते थे। इसी तरह अबू सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी आंखों को रोने का आदी बनाओ और अपने दिलों को गौर व फिक्र का आदी बनाओ। गौर व फिक्र करने से आपको अल्लाह मिल जाएगा। तो आज आपने ये सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि आज तक मेरा इन सारी निशानियों के साथ क्या ताल्लुक रहा और अब कैसा होगा कुरान पढ़ने के बाद, आज से कैसा होगा। हमें ये तय कर लेना है कि जब हम इस आसमान को देखें, जमीन को देखें, बारिश पे नजर डालें, तो हमने ऐसे ही नहीं गुजर जाना, इसमें हमने अपने रब को तलाश करना है। जो तलाश करेगा उसको रब मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक घड़ी मुख्तस करो, यानी एक घड़ी आप अपनी फिक्स कर लो जिसमें अपने रब की कारीगरी पर गौर करो। तो देखें आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग इन आयात को हिफ्ज कर लें या हिफ्ज कर चुके हों, आप लोग इनका तर्जुमा भी आप इंशाअल्लाह ताला याद कर लेंगे, लेकिन इससे रब का यकीन नहीं आएगा। तर्जुमा भी याद कर लें, हिफ्ज भी कर लें, यकीन तब आएगा जब आप गौर व फिक्र करेंगे। ये प्रैक्टिकल करने वाली आयत है, क्या रटने वाली। रटने से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा, अल्फाज तो मिल जाएंगे जाहिर है, सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन जो असल इसका मकसद है ना कि इससे रब को पा लो, ये है निशानियां, इनसे रब याद आ जाना चाहिए। वो चीज नहीं मिलेगी, वो गौर व फिक्र से मिलेगी। और गौर व फिक्र करने के लिए जाहिर आपको वक्त निकालना पड़ेगा। दूसरी फिक्रों को थोड़ा जहन से निकालेंगे तो इन पे गौर व फिक्र करेंगे ना। हमारे पास तो आज ये वक्त भी नहीं है कि हम अल्लाह की निशानियों को ही देख सके। कई चीजों के सामने से हम गुजर जाते हैं और मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकलता, उन पे गौर नहीं करने का वक्त मिलता, क्योंकि हम हमारा जहन ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड रहता है दुनिया की फिक्रात से, दुनिया के गमों से, इन्हीं की बस हर वक्त इनका ही, इनके अंदर ही जहन चलता रहता है। तो इंशाल्लाह ताला अब हमने अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलना है। देखिए कुरान हमें कैसा इंसान बनाना चाहता है, ये पता चल रहा है ना, कैसा इंसान बनाना चाहता है कि हम इस तरह गौर व फिक्र करने वाले बन जाएं, तफक्कुर करने वाले लोग बन जाएं। कुरान ऐसा चाहता है हमें देखना, तो हमने फिर इसी तरह सोचना है, ऐसे सुमन बुकमून की तरह नहीं रहना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला, आप देखें इन इस आयत में भी आया, आगे भी आप पढ़ते रहेंगे, बार बार रिमाइंडर्स हैं। ये कुरान हमें याद कराता है, हमें इस तरफ देखने का शऊर देता है, याद दिहानी कराता है, तो फिर ही हमारी आंखें खुलती हैं। वरना आसमान जमीन कोई नई थोड़ी है हमारे लिए, बारिश कोई नई थोड़ी है हमारे लिए, हम तो देख रहे हैं इसको कब से, और ऐसे ही देख के गुजरते रहे हैं। अब इंशाल्लाह नई नज़र से देखना, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, लगाएं इसकी तिलावत इंशाल्लाह, फिर आगे चलेंगे।
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.